ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नयमां चरणं अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्देवरं जाड्डं जागुदरोति संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि न सद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्याये श्री श्री गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी जी एवं गिरिराज गोवर्धन अनुग्रह আমাদের ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল। আজ পরিক্রমার অন্তিম দিবস ছিল। আজকে সবসে প্রথমে গোবর্ধন থেকে যাত্রা করে আমরা খদির বনে গিয়েছি। রাস্তাতেই পাশেই আজনক গ্রাম, সেখানে দাঁড়ানো হয় না বটে, কিন্তু স্থানকে প্রণাম করে আগে যাওয়া হয়েছে। আজনক মানে আঞ্জন, অঞ্জন। কোনো সময় সখীগণ শ্রীমতী রাধিকাকে শৃঙ্গার করতেছিল, নানাবিধ অলঙ্কারে তাকে ভূষিত করেছে, কানেতে কর্ণফুল, নাসেতে লবঙ্গ, গলাতে হার, হাতেতে বাজু বন্দি ইত্যাদি সব দিয়ে ইতিমধ্যে কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়েছেন। কৃষ্ণের বাঁশি বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গে রাধাজি চমকে উঠেছেন আর তাড়াতাড়ি করে অর্থাৎ আজন লাগাইতে যাচ্ছে, কিন্তু আজন লাগাইতে দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে চলে আসলেন কৃষ্ণের নিকটে। কৃষ্ণ তাকে দেখে পরম আনন্দিত হইলেন এবং নকশেকে শিখ পর্যন্ত সমস্ত তাহার শোভা দেখছে, দেখতে বলিয়া তোমার সখী তো প্রিয়ে তোমার আঁখেতে আজন নাই, বাকি তো সবটাকে আছে। এই বলে তিনি নিজে থেকে আজন নিয়ে কৃষ্ণ রাধারানীর আজন লাগিয়ে দিয়েছিলেন, এই জন্য তার নাম হল আজন। চোখেতে কৃষ্ণ তার প্রিয়সী শ্রীমতী রাধিকাকে অঞ্জন লাগিয়ে দিয়েছিলেন।
Putting nose ring, combing the hair, mascara, everything. when Krishna plays flute and all the gopis run to meet with Sri Krishna. When Sri Krishna saw that attraction to him, he was very happy. They saw that Srimati Radhika had no anjana, no mascara on one eye, then with his own hand, Krishna put mascara there.
तापरे खदीर बन वहां से खदीर बन गए। खदीर बन माने खदीर पान में एक दिया जाता है मसाला, उसका बन है। और वहीं पर उसको खैरो आजकल कहा जाता है। बकासुर जब आया, एक चोंच नीचे एक चीज आकाश में लगा दिया और कृष्ण को निगलने के लिए जब गया, सखाओ ने देखा जैसे अरे खाए रे खाए रे, अरे तो कृष्ण को खा जाएगा, इसलिए जिस स्थान पर लीला हुई उसको कहते हैं खाए रे खैरो बन। अथवा बकासुर को जब कृष्ण ने खदेड़ा तो खदड़ने से उसका नाम हो गया खदीर वन अथवा खदीर वन। इस तरह से ये खदीर वन का है। वहीं पर श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी कभी कभी आते थे। लोकनाथ गोस्वामी बहुत दिनों तक वहाँ वन में रहे। सरोवर के तट पर, आप लोग सरोवर के तट पर गए होंगे, वहीं सरोवर के तट पर ये लोग एक कुंज कुटी में बैठ करके भजन करते थे और भूगर्भ गोस्वामी कभी कभी वहाँ से मिलते थे। उनका भजन स्थान भी वहीं पर है। इसको पार करके भदावर नामक ग्राम रास्ते में पड़ता है। भदावर माने भद्रा सखी का स्थान है, इसलिए उसको भदावर कहते हैं। पास में बिजुआरी नामक एक ग्राम है। बिजुआरी माने कृष्ण अक्रूर जबकि मथुरा से आए और कृष्ण बलदेव को लेकर के मथुरा जाने लगे, तो गोपियां वहां पर रथ के आगे खड़ी हो गई। किसी ने लगाम पकड़ लिया, किसी ने कुछ कर लिया। कृष्ण ने उनको समझाया बुझाया और फिर जहां वहां से चले, जब तक वो धूल रथ देखी खड़ी रही, धूल देखा, जब धूल शांत हो गई तो बिजली की भांति गिर पड़ी। इतनी गोरी थी, गोरी से बिजली, बिजुआरी, बिजली की भांति वहां पर गिर पड़ी, इसलिए बिजुआरी नाम पड़ा। पासी में सी परसो दो गांव है, सी एक परसो। कृष्ण ने गोपियों से प्रतिज्ञा की, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, मैं कल नहीं तो परसों आऊंगा और शीघ्र आऊंगा। शीघ्र से सी, शीघ्र का सी आ गया और परसों से, पलसों से परसों, शीघ्र ही मैं आ जाऊंगा, परसों तक जरूर मैं आ जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा क्या सी परसों। पासी में, अच्छा, अजनौक वन में विशाखा जी का जन्म स्थान भी है और करहेला में, करहेला पासी में है, करहेले में ललिता सिखी जी का जन्म स्थान है, वहीं पर उसके पति रहते थे। पीछे वो लोग चले गए ऊंचा गांव में, ऊंचा गांव में ही उनकी जितनी लीला हुई। जन्म स्थान करहेला में, शहर उपानंद जी का गांव है, कृष्ण के चाचा लगते थे, ताऊ, ताऊ लगते थे। ताऊ माने पिताजी के बड़े भाई। नंद जी पांच भाई आते, उपानंद, उपानंद, अभिनंद, सुनंद, सुनंद, नंद, इसमें उपानंद जी थे। इन्हीं के पुत्र का नाम सुभद्र था, कृष्ण से उम्र में बड़े थे और कृष्ण के से भी प्राणों से प्यारे के रूप में इनकी रक्षा करते थे। माँ जसोदा जी सुभद्र के हाथों में कृष्ण का हाथ दे करके उनको सौंप देती थी, या रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर में है। उनकी पत्नी का नाम कुंदलता था, जो राधा कृष्ण को मिलन कराती थी और बड़ी चतुर और बड़ी कुशल थी। इसके बाद में बैठन आदि ग्रामों में गए। हाँ हो
Kalir is one type of masala, one type of spice. And there is Kairogam, where Bakasura put his lower beak on the ground and his high beak in the sky to eat Krishna and swallow him. Then the cowboys cried, Kaire, Kaire, Krishna has been eaten. So where Krishna dispelled Bakasura, that is called Kalirva. There is also the Kund, and in that forest, Bhagurva Goswami and Sri Loganath Goswami performed bhajan there for some time. We did not visit there, but on the way we passed Balova down. There is the village where Bhadra Sakhi took birth. Nearby is also Bhitwadigam, when Akura took Sri Krishna Balaram towards Mathura. Then the gopis tried to stop the way. Some took the reins of the horses, others took this, they tried to block the way. But when Akura dodged the gopis, then the gopis remained there as long as they could see the dust. And when the dust fell on the ground and Krishna had not returned, they fell on the ground like streaks of lightning. Therefore they are called Bhitwadi. There is also Sea, another village called Seagaon. There Krishna promised, I will Sikri Bhattasanga. I will quickly come back. Quickly meet Sikri, and from that Sikri came the village Sea. Also Krishna promised, I will come the day after tomorrow, Parsuanga. Therefore from Parsukam, Parsugam. There in Adidogam is the birthplace of Vishakha Devi. And in Korelagam, there is the birthplace of Lalita Devi. After she went to Kuchagaon near Vashana and performed many pastimes there. There is Sahagaon, the place of Upananda. That is the big elder brother of Srinanda Baba and Krishna's uncle. Upananda's son is named Subhadra and he is very dear to Krishna and he protects Krishna. When Mother Yasoda sends Krishna cow grazing, she always puts his hand in the hand of his cousin, Subhadra. Subhadra's wife is Kundalata, and she is very expert and clever at arranging the meetings of Sri Radha and Krishna.
इसके बाद में हमारी यात्रा कोकुल वन में गई, जावट था पर जावट में। कैन यू टेल समथिंग अबाउट जावट? इन ब्रीफ,
most places in all of Braja, and the very place where Srimati Radharani lived after she became married, and she lived in the home of her in-laws, Jatila Devi, and her sister-in-law, Kutila Devi, in Javadgram. So this place is worshipped by our Gaudiya Vaishnava Acharyas as being the place where all the Parakiya Ras pastimes of Krishna are staged, and the place from which Srimati Radhika would go out from her house to meet with Krishna. Our Acharyas have described, and Srila Gurudev has narrated some of those pastimes in his Prajmandala Parikrama book. Very wonderful pastimes, especially from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, that he has revealed how Sri Krishna so many times is coming there to the house of Jatila and making his attempt to meet with Srimati Radhika. So that place, Javad Gram, there it is named after the tree, Javat. There is one tree there, which is a very famous tree that Sri Krishna himself would try to climb into that tree when he could not meet with Srimati Radhika. Sometimes Jatila and Kutila, they would be making so many obstacles for Srimati Radhika to leave the house. Despite all the attempts of her sakis and all of her duties, it was somehow or other impossible for her to leave the house. So one time Sri Krishna came there and he climbed up into this tree and he was making the sound of a cuckoo bird, a cuckoo bird. And he was going cuckoo, cuckoo, in a very sweet voice and very a special way. So even Jatila and Kutila, they heard the sound of Krishna making this, this sound like a cuckoo bird, and they thought, what an extraordinary cuckoo. We've never heard this sound before. So then even Srimati Radhika and the Sakis, they were also hearing. And then Jatila and Kutila, they said to Srimati Radhika, oh, we have never heard such an extraordinary bird. And Radhika and the Sakis, they also said, yes, we have also never heard. We want to go and see this bird. So by such a trick, they were able to get the permission of Jatila and go out of the house and meet with Sri Krishna. So this place also, Javak Gram, is named after Javak. Javak means a reddish, like a paste, which was used to apply to Srimati Radhika's lotus feet, like a red lac. So Sri Krishna sometimes used to take this red lac and to smear it on his head, on his chest, everywhere. So for the remembrance of Srimati Radhika, therefore this gram is called Yavat Gram. So sometimes Sri Krishna was coming there, but it was very impossible to come because Srimati Radhika developed man so intensely, so strong, that it was impossible for Krishna to break her man. So one time Sri Krishna came there, but he failed in his attempt to break the man of Srimati Radhika, and then he was going away from there. And then he met Vishakadevi. And Vishakadevi told to him, oh, you should disguise yourself as a student, and you should go there begging alms. So Sri Krishna, he took on this disguise. And when Sri Krishna takes on any disguise, it's impossible for anyone to tell. He's the most expert in all arts. So when he wants to disguise himself, no one can tell who he is actually. So then Sri Krishna put on this dress of a young student. He had a danda in one hand and a begging bowl. He had a Brahmin thread across his chest. He had once a book underneath his arm. And he came there with wooden shoes. Now he came very early in the morning time to the house of Jatila. And he was calling out for alms. And he was calling out the names of the Lord, Alak Niranjan. And then when Jatila and Kutila heard the calling of this young Brahmin student, they saw him there, but it was very early in the morning, and they were making cow dung patties. So they had not yet bathed, and they were not clean. So the custom is, before we will give any donation, any alms to any beggar who comes to the door, or especially a Brahmin beggar, you must be in clean condition. So they went and they asked Srimati Radhika that she would please go there and she would accept, give alms to this young Brahmin student boy. But Srimati Radhika refused. She said that I will not go in front of anyone except my husband. So then Tatima and Kutima, they were defeated and they were thinking, oh no, what will become of us? And then the student, Sri Krishna himself, began to tell, oh, I cannot stay here very long. I can only wait as long as it takes to milk the cow. So then Tatima became very worried and she thought, oh, if we do not give alms to the student boy and he goes away without receiving alms, our family may be cursed and someone may die or our cows may die in our family. So now, Jatila came into the room of Srimati Radhika again, and very sweetly, she tried to convince her and explain to her, you please, please go there and give some alms. So finally, Srimati Radhika agreed. And Srimati Radhika took some, like, atta flour, wheat flour for making chapatis, and dal, and various other provisions like sabjis, and she put it in a big basket. And now she put a big
basket. Not cooked.
Yes, it was not cooked. These are all raw items. So she put it in a basket, and now she put her veil over her head, and she went to the door with her sakis, Lalita Vishaka and the other sakis all surrounding her. Now she came to the doorway there, and she began to offer these alms to the student boy. So then Sri Krishna, disguised as a student, said, oh, I don't have any need for these kind of alms from you. What I want from you, it will be very valuable to me if you donate to me in my wedding bowl, your man. So then at that moment, Srimati Radhika, she understood who is this person. And she opened up her veil very slightly, smiling at him, looking at him. Then she took all the contents of her basket and she dumped it on the head of Sri Krishna. And now Sri Krishna became very happy and he went away from that place realizing that he had succeeded in breaking the mind of Srimati Radhika. So many beautiful, joyful pastimes like this.
Thank you. Other stories, you know? You know Tridandi?
So one time, every day, Srimati Radhika, she would go to Nandagaon to cook for Sri Krishna because of the benediction that Guru Vasa Rishi had given her, that anything that she cooked would give long life to that person who ate it, would taste like nectar. But Jyotima, she began to be very suspicious and she didn't like her daughter-in-law every day going to the house of another person to cook for him. So she banned Srimati Radharani from going to Nandagaon. And at that time, Srimati Radharani, she became so unhappy and in separation from Krishna. And Krishna also. So the Sakis, they were very disturbed at this situation that Jyotila had made. So then Vishakha, she thought of a very good idea that Srimati Radharani, she should say that she had been bitten by a snake and that she had to quickly find a snake charmer to relieve her of that poison. So Srimati Radhika, she was lying in her room as if suffering deeply from a snake wound, snake bite. And then Jyotila became very anxious. Sri Shaka and Lalita, they ran to tell Jyotila what had happened. And immediately Jyotila, she wanted to find someone who would relieve her of this snake poison. But then Srimati Radhika, she said, I will not be seen by any man at all. You cannot bring any man here, because it was suggested that perhaps Krishna himself knew the art of taking away the poison from a snake, but Srimati Radharani said, no, I will not seek the face of that person. And then Vishakha, she suggested to Jyotila, oh, actually, I have a friend who has just come into the village, and she's the sister of the daughter of Gargamuni, and she has come from Mathura, and she knows the art of taking away this snake poison. So then, Vishakha and Lalita and Jyotila, they went to the house of Kundalata. They went to the house of Kundalata. And there, yeah, the name of the sister was Vidyadhari, but of course this was Sri Krishna himself, disguised as the sister. And then, so, the Vidyadhari, she was approached by Jyotila and Lalita and Vishakha to please come and take away the poison from Srimati Radhika. And initially, Vidyadhari was saying, no, no, I cannot possibly come to a house like this. I'm not just some wandering person that goes from house to house. And eventually, Jyotila had to pay very much that Vidyadhari would come and take away this poison from Krishna and from Srimati Radhika.
What telling, sir? I'm not all understanding all these things. Then what became?
Then Vidyadhari, she went to the house of Jyotila to take away the poison from Srimati Radhika. And then she was in the room with all the sakis, and she began to gradually massage the body of Srimati Radhika. When Vidyadhari, who was Krishna, came to the breast of Srimati Radhika, he said, oh, now the poison has become very strong. I have to call that snake from Kailash and demand that he come and take away this poison. But I have to be alone with Srimati Radhika. So then Jyotila and Kotila, they had to leave the room outside, and Krishna, he bolted the door. Vidyadhari bolted the door. And then Krishna, after some hours, he called that snake from Kailash. And he called very loudly, oh, you snake, you come from Kailash. Why did you bite Srimati Radhika? And that snake, he answered. He said, actually, I meant to bite Abhimanyu, but I couldn't find Abhimanyu, so I bit Radhika instead because I wanted to punish Jyotila for stopping Srimati Radhika going to the house of Mother Yashoda to cook for Krishna. Because Lord Shiva himself had benedicted Radharani with this blessing that her cooking would nourish Krishna. So then the snake was there, and Krishna, or Vidyadhari, was saying to the snake, oh, but how will we take this snake poison away from Srimati Radhika? And then Jyotila and Kotila, they were shouting from the door outside, oh no, we will allow Radharani, Srimati Radharani, to go and cook for Mother Yashoda. We will not stop her again. And the snake, he became satisfied with that, and he left, and he took that poison with him. Yes, so Krishna was imitating that snake. So Jyotila and Kotila, they became very afraid when they thought that the snake was coming to...
Very long story.
To bite.
Finish.
And then, eventually, Jyotila and Kotila, they came into the room, and Radharani, Srimati Radharani, she was completely cured and satisfied, And then they wanted to reward Vidyavati. So they wanted to give her new clothes, etc. And then Jyotila, she was thinking that perhaps that poison would come back again in the evening. And that Vidyavati, she should stay the night with Srimati Radharani in the same room, just in case that snake poison came back. So in this way, these pastimes in Java, which are relating to Jyotila and Gotila, we heard today from Putupad Vijnanas Maharaj, how much Jyotila and Gotila are actually acting within the pastimes of Krishna, and should not be just seen as some mundane personalities, but they're very important ingredients in the whole arrangement of the rasa between Radha and Krishna. So there are so many pastimes in Java, and this is one.
There are so many stories, बहुत सी यहाँ पर लीलाएं हुई हैं. एक समय राधिका जी जिन्हें मान कर लिया, दो तीन दिन तक कृष्ण से मिली नहीं, कृष्ण भी बेचैन हो गए नहीं मिलने से. तब विशाखा राधा जी से आकर बोली, तुम्हारे बिना उनकी कैसी दशा हो रही है, वो कहीं प्राण न छोड़ दे. तो जाने के लिए राजी हुई अभिशाप के लिए, किंतु बात कैसे बने, सुबल सखा का मुख और ठीक उनके अंगों का गठन राधा जी जैसा था. उनको यदि लहंगा इत्यादि पहनाया जाता तो राधा जी के समान देखेंगे. एक दिन सुबल हाथ में रसिया लेकर और जावट में पहुंचा. वहां पर जटिला पुतला दोनों कंडे बना रही थी. अरे तू क्यों आया यहाँ, यहाँ से भाग जा, भैया हमारा बछड़ा खो गया, खोज रहा हूं. कजा तेरा बछड़ा है तो जाओ खोज लो, देख लो. तो भीतर चला गया और जा करके श्रीमती राधिका जी का को अपना वस्त्र दे दिया और हाथ में एक बछड़ा दे दिया, जिससे कि राधा जी का स्तन इत्यादि दिख न पड़े. और तब राधा जी सुबल का वेश बना करके बछड़े को लेकर के निकल करके जा रही थी. जटला का जब मिल गया तो सुबल के स्वर में बोली, हाँ बछड़ा भैया मिल गया, मैं लेकर के जा रहा हूँ. जब वहाँ गई, जब कृष्ण के साथ में मिली, तो कृष्ण ने कहा, जे सखे राधा जी आई नहीं, तुम अकेले लौट आए. कहे हाँ जटला जी ने आने नहीं दिया. यह सुनकर के बड़े दुखी हो गए. तो राधा जी हंसने लगी कि मैं ही हूँ. तब कृष्ण बड़े आनंदित हुए. इतने में सुबल भी इसी प्रकार से वहां पर आ पहुंचा और दोनों को मिलन कराया और बहुत आनंदित हुआ. ऐसे ऐसे बहुत सी कथाएं वहां पर हुई, संक्षेप में कहा. अब यहां से हाँ आरो बहुत अच्छा, सब लोग जानते हैं. कोकिल बन, बोलिए कोकिल बन में क्या हुआ, नहीं जानते, नहीं जानते हैं, थोड़ा ही है बोल.
So in Kokil Pan, Krishna used to come to meet his friend Radhika, but in Java, in Jutland, Shukla, they always blow it in so many ways. So Krishna took a pretext how to cause the Radhika. Krishna became a very wonderful cuckoo bird and climbing a tree. He started to make sweet sound like cuckoo bird. Coo, 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 like this. And Jagannath Kutla, the form who is so wonderfully calling like this, they cannot, they see so very wonderfully, never saw like this. They became attracted, their bird like this, and everybody come out. And also in that, beautifully, the meeting of Radha and Krishna happened there. Also in this Gopil Bhavan, another pastime they should tell, Koshi. One Krishna came in the night time in the Radhika and knocked the door. Radha was in Maan. So Krishna called, so Lord Radha asked Koshi, who is this? Who are you? Then Krishna told, I am Ghanasya Krishna. So Radha changed the meaning and took it. Krishna means that Krishna black snake. Oh, no need, the black snake should go away because it's very, very poisonous. It'll bite me and the poison will not go easily. Then Krishna again knocked and Radha asked, Koshi, who are you? Then Krishna told, I am Ghanasyam. Radha is saying the meaning of Ghanasyam. Ghanasyam means a black cloud. Oh, no need here, no need then, you should go and land somewhere else. Then again, Radha told Koshi, Krishna told, I am Hari. Turn to the meaning of Hari means monkey. So if no need of monkey here, you should go to the forest. Like in so many ways, Krishna is going to that place also, we can go see. These are the pastimes in popular.
Okay. इसके बाद में बैठन छोटी और बड़ी में पहुंचे. यहाँ पर बैठक हुआ करती थी. नंद जी उपानंद और कृष्ण के विषय में चर्चा करते थे. चरण पहाड़ी एक दिन कृष्ण ने बंसी यहाँ पर बजाई और जितने पशु मृग हरिण ऊंट यहाँ तक की वो सब वहाँ पर आ गए. आने का चिन्ह तो है कृष्ण की तरफ में जहाँ पर कृष्ण का चरण चिन्ह है, किंतु जाने का नहीं. आने के समय में तो जब बंसी बजाई तो वो पिघल गया और थोड़ी देर के बाद में जब कृष्ण की बंसी बंद हो तो पत्थर फिर सूखे बन गए. इसलिए जाने का नहीं है. उसमें हिरणों का चिन्ह है, गायों का चिन्ह है, कृष्ण का चिन्ह है, चिन्ह बलदेव जी का है. और पासी में चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी उसको और क्या कहते हैं, चरण पहाड़ी शेषाई भी है. वहाँ पर लीला हुई. और पासी में कोसी, कोसी वन है, उसको कुशस्थली कहते हैं. कुशस्थली में कृष्ण नंद बाबा इत्यादि को द्वारका का दर्शन कराया था. और वहीं पर एक समय राधा जी अपनी कुंज में थी या अपने घर में वहाँ पर भी, तो कृष्ण आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो राधा जी ने कहा, जी कोवासी तुम कौन हो? तो कृष्ण ने कहा, जी कृष्ण ओ कृष्ण मैंने काला सर, यहाँ पर काला सर पर यहाँ पर डस देगा, यहाँ से भागो भागो जल्दी भाग जाओ. कृष्ण ने कहा, जी मैं घनश्याम हूँ. ओ घनश्याम, तो यहाँ पर मेघ तुम हो, यहाँ पर वर्षा की जरूरत नहीं है, बरसाओ मत, हमारा यहाँ आंगन गीला हो जाएगा, दूसरे वन जंगल में जाओ, खेती में जाओ, वहाँ पर बरसाओ. अरे न मैं चक्री हूँ. ओ चक्री हो, चक्री माने होता है कुम्हार जो बर्तन बनाता है. तो यहाँ पर शादी विवाह नहीं है, जहाँ पर शादी विवाह हो रहा है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर बर्तन ले जाओ, हमारे यहाँ मत. उन्होंने कहा, अरे मैं श्रीहरि हूँ. हरि माने बंदर और सिंह होता है. उन्होंने कहा, जैसे यहाँ पर बंदर और सिंह की जरूरत नहीं है, बंदर नोचलेगा कहीं और सिंह कहीं मार डालेगा, इसलिए वन में जाओ यहाँ रहने की जरूरत। रूप गोस्वामी कहते हैं ये लीला जहाँ पर हुई वे राधा कृष्ण हम पर अनुग्रह करे। इस तरह से कोसी इत्यादि स्थान में हो करके चरण पहाड़ी हो करके और फिर वहां से लौटे हैं। माधुर्य कादंबरी थोड़ा सा इसका भी कर ओ यूल हैव टू स्पीक ओ रति का प्रसंग चल रहा था। रति मैंने भाव और उसका लक्षण बतला शुद्ध सत्व विशेष साधना प्रेम सुर जान साम्य बात रुचि चित्तम आश्रण की दसौ भाव उच्चते। और यदि किसी को रति हो जाए या भाव हो जाए तो साधकों को जात रति साधकों को कृष्ण के रूप शब्द स्पर्श गंध और रस इन पांच प्रकार के विषयों का मानव साक्षात रूप से आस्वादन होता है। कृष्ण के रूप कृष्ण श्यामले रंग के हैं, कृष्ण के अंग की श्यामलता अधर और नेत्र इत्यादि अंगों की अरुणिमा मंदहास्य की शुभ्रता वसन भूषण पीत वसन की छटा वो मानव साक्षात रूप में अनुभव करता है वो साधक जात्रति, जिससे उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे स्वयं अभिषिक्त हो जाता है। जात्रति साधक कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि नूपुर और कांची इत्यादि झंकार की ध्वनि मधुर कंठ ध्वनि और उनका आदेश सुनने के लिए कानों को इधर उधर करता रहता है, मानो कृष्ण बंसी बजा रहे हैं सुनने जा रहा हो, वो जा रहे हैं उनके चरणों का नूपुर बज रहा हो, उनका आदेश सुनने कृष्ण जा रहे हैं या कुछ आदेश न दे, कान को इधर करता है उधर करता है। कभी कभी कृष्ण के चरण कमलों का कोमल स्पर्श अनुभव कर रोमांचित हो जाता है, उनके हाथों का स्पर्श पा करके एकदम रोमांचित हो जाता है। अब कृष्ण को पाया तब कृष्ण को पाया इस प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है, अब पाने वाला है अब कृष्ण मिलेंगे। जात रति अवस्था परमानंद की अवस्था है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं रति आनंद रूपे वर, रति साक्षात आनंद स्वरूप है। रतिमान जिसको रति हो गई है वो साधक कृष्ण की स्फूर्ति प्राप्त कर अपार आनंद का अनुभव करता है, कभी कभी मधुर माधुर्य आस्वादन में मत्त हो जाता है और कभी कृष्ण की स्फूर्ति नहीं होने से अत्यंत खिन्न हो करके इधर उधर रोने लगता है, मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार अंगों में कभी हर्ष आनंद कभी विषाद इत्यादि नाना प्रकार के संचारी भाव निर्वेग विषाद दैन्य ग्लानि श्रम मद गर्व शंका त्रास आवेग उन्माद अपस्मृति व्याधि मोह मृत्यु आलस्य जाड्य ब्रीडा अवहित्था स्मृति वितर्क चिंता मति धृति हर्ष आदि ये 33 संचारी भाव उसके अंगों में देखे जाते हैं। इस रति की अवस्था में ही भक्त साधक कहलाता है। ऐसी रति की अवस्था में कोई पहुंच जाने पर उसको साधक कहते हैं। साधक भक्त का लक्षण क्या है देते हैं, उत्पन्न रतय सम्यक नैर्विघ्नम अनुपागत कृष्ण साक्षात कृत असौ योग्या साधका प्रतिकृतिता। जिस भक्तों में कृष्ण रति का आविर्भाव तो हुआ है, रति उत्पन्न उसके हृदय में हो गई है, किंतु उसके विघ्न भी संपूर्ण रूप से दूर नहीं हुए हैं, ऐसे को साधक कहा जाता है। रत उत्पन्न हो गई, किंतु उसके विघ्न कुछ कुछ अवशिष्ट हैं, अन उपागत विघ्नम अन उपागत, अभी विघ्न नहीं दूर हुए हैं। दृष्टांत, हे बुद्धिमान, भगवान की वार्ता नदी से उत्पन्न अश्रुओं से अभिषिक्त होने पर भी दामानल की प्रदीप्त शिखा वर्तमान है, यह चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंगों में प्रचुर रोमांच और मछलियों जैसा नृत्य देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि शीघ्र ही तुम्हारे हृदय आकाश में अमृत स्पृहा का नाश करने वाले कृपा दृष्टि युक्त कृष्ण का उदय होगा। अब मिले कृष्ण तब मिले, कभी कभी रूप का आभास भी मिल जाता है, ऐसे मालूम है जो कृष्ण को देखा, उनको सुना, उनको स्पर्श किया, उनकी मधुर मुरली सुन पड़ी। अर्थात भगवत वार्ता श्रवण करने से जब अश्रु प्रवाह निरंतर बहने लगता है, तो संसार बंधन के संबंध में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो शीघ्र कृष्ण की कृपा अब होने वाली है। ये रूप गोस्वामी कहते हैं साधकों को, रति की इस दशा में हरि कथा का आस्वादन अमृत की भांति लगता है और दूसरी कामनाएं हृदय में नहीं रहती हैं। बस बोलो।
So the jati relics, the jati, jata rati sarak is described here. The sarak in whom rati or bhav rati has arisen. At this stage the sarak becomes qualified to experience the form of Krishna, the fragrance of his body, the sound of his voice, etc., the touch of his hand and the fragrance coming from his body. Krishna's form is very darkish and very attractive. His eyes are slightly reddish and his ornaments are shiny and very attractive. At this stage, the sadhak directly realizes the beauty of Krishna's form and in happiness he weeps as if he is giving himself an abhishek. Then he hears the sound of Krishna's flutes or the sound of Krishna's angle bells as he moves here and there. And he cocks his ears very eagerly to hear that Krishna may give him some instruction. When touched by the hand of Sri Krishna, all the hairs of his body stand on end and he thinks, now I will get Krishna, now I will get Krishna. Sri Rupa Goswami describes that this bhava-bhakti or rati is comprised of complete happiness. And here he gets a spurti or momentary vision within the heart of Sri Krishna himself. And getting that vision, he becomes completely absorbed in the sweetness of Krishna's form, touch, fragrance, etc. And sometimes when he cannot have spurti of all of this, then he laments bitterly in separation and weeps. At that time, the 33 sanchari bhavs, which are temporary emotions which swell like waves upon the ocean of the Sthaiva contained within the heart of the sadhak, like lamentation, happiness, joy, they rise like waves. Therefore, what is a sadhak? Actually, someone in whom this bhava-bhakti has awoken, he is a sadhak. Therefore, Sri Rupa Goswami has given the example of Bilva Mangala Adayama. Who is a sadhak? An example of a sadhak is Sri Bilva Mangala Thakur. A sadhak is that devotee in whom bhava-bhakti has awoken, but still, even though he is qualified for the darshan of Krishna, some obstacles remain in his heart. So, at that time, the sadhak is decorated with the astasattvic bhavs, the 8 symptoms of perfection. And he is comforted. The devotee is saying, Krishna is very kind. O devotee, very soon he will appear within the sky of your heart. So, the devotee becomes so much happy in experiencing the beauty of Krishna's form, the touch of his cool, soft hand, the beautiful beautiful sound of his voice, the fragrance of his body, etc. The devotee even has no time to wonder, how will I get liberation? How I can be free from this world? At that time, Harikatha is like complete nectar, and there is no touch of material desire within the heart.
उदाहरण देखो, जात रति अर्थात तो रति उत्पन्न हुई है किंतु अभी विघ्न दूर नहीं हुए हैं। कैसे? महाराज भरत जात रति हो गए थे किंतु कुछ विघ्न था, वो उसी विघ्न के कारण ही एक हिरण शिशु के प्रति आसक्त होकर के 3 जन्म नष्ट हो गए। यह विघ्न नष्ट होने पर रति और प्रौढ़ होकर के परिपक्व होकर के प्रेम हो जाएगी। ये विघ्न अभी बाधा है रति में, वहां से फिर किसी कारण से यहां तक कि अपराध भी हो सकता है, किसी कारण से अपराध होने की संभावना नहीं है तो भी अपराध भी हो सकता है। यह रति जगत में बहुत दुर्लभ है, इसको साधारण लोग नहीं समझ सकते। वो लोग समझे हैं कि पागल है, मूर्ख है, क्या है, और जो भक्ति तत्वविद है वो केवल समझेंगे ये रति की अवस्था में पहुंच गए।
But still there remains a trace of some obstacles. An excellent example is Bharat Maharaj. Even though Rati had awoken within his heart, because of the presence of some slight obstacle, he became attracted to a deer and lost 3 lifetimes. But when that Rati matures into a breath, there is no touch of obstacles remaining in the heart. In Rati, it may even be that someone may commit an offense and then he will fall down. But this rati is so extremely rare in this world. An ordinary person will think the person who has achieved rati, he is very foolish or he is mad. But only someone who completely understands the tattva of bhakti, then they will understand the actions of a devotee in the stage of rati.
Kal subah mein हरी कथा होगी और परम पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का आविर्भावना तिरुभावरी तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि देंगे। टुमारो दे
दिस
अपीयरेंस डे ऑफ भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी प्रभु वी विल गिव पुष्पांजलि इन हिज लोटस फीट। और कुछ?